دیکھیے بھائی آگے سبق. المنصوب باللتی لنفی الجنس ای لنفی صفة الجنس وحکمه وانما لم يقل اسم لا لانه ليس كله ولا اكثره من المنصوبات فلا يصح جعله مطلقا من المنصوبات لا حقيقة ولا مجازا بل المنصوب منه أقل مما عداه فلا بد من التعبير عنه بالمنصوب بها. گزشتہ سبق میں ہم نے لائے نفی جنس کے اسم کے بارے میں پڑھا تھا اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ لائے نفی جنس کا اسم بھی بعض اوقات منصوب ہوتا ہے تو اس لیے اس کو منصوبات میں سے شمار کیا. اور لائے نفی جنس کے اسم کے بارے میں تین صورتیں ہم نے پڑھی بھائی کہ کبھی لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے, کبھی لائے نفی جنس کا اسم مبنی علی الفتح ہوتا ہے, اور کبھی لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تفصیل یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو بتلایا کہ لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا. تین شرطیں ہیں بھائی. پہلی شرط یہ کہ وہ اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو, یعنی درمیان میں فصل نہ ہو بھائی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نکیرہ ہونا چاہیے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو. جیسے لا غلام رجل فی الدار, کسی مرد کا کوئی غلام اس گھر میں نہیں ہے. تو اس میں دیکھو غلام رجل یہ لا نفی جنس کا اسم ہے, یہ غلام, اور یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور نیز یہ نکیرہ ہے کیونکہ نکیرہ کی اضافت نکیرہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ نکیرہ ہی رہتا ہے, اگرچہ اس میں تخصیص آ جاتی ہے, احتمالات کم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ معرفہ نہیں بنتا, نکیرہ ہی رہتا ہے. تو غلام رجل, رجل کی طرف اضافت کے باوجود یہ غلام کا لفظ نکیرہ ہی ہے. تو دوسری شرط بھی پوری, اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہو, اور یہاں پر بھی غلام کا لفظ رجل کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو یہ منصوب ہے. لا غلام رجل فی الدار, تو یہ غلامہ پر اسی لیے نصب پڑھا گیا. بات سمجھ میں آ گئی. اور اگر ان تین شرطوں میں سے مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو, البتہ پہلی دو شرطیں پوری ہونی چاہیے کہ لا کا اسم لا کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہو اور نکیرہ بھی ہو, ہاں البتہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو, تو اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوگا. جیسے لا رجل فی الدار, اب دیکھو رجل یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے, نکیرہ ہے, دونوں شرطیں پوری, لیکن تیسری شرط مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے, اس لیے یہ مبنی علی الفتح ہے. اور علامت کیا ہے مبنی ہونے کی؟ میں نے بتایا کہ اس پر تنوین نہیں آ رہی, ورنہ تو ویسے یہ رجل پر تنوین آتی ہے, رجلن رجلن رجلن, حالت رفعی نصبی جری تینوں حالتوں میں. اور مانع تنوین دو چیزیں ہیں, الف لام اور اضافت, اور یہاں لا رجلا اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور نیز آگے اس کی اضافت بھی نہیں ہو رہی, تو مانع تنوین کوئی بھی چیز نہیں, پھر بھی اس پر تنوین نہیں آ رہی, معلوم ہوا یہ مبنی ہو چکا ہے. تو لا رجلا فی الدار, تو تیسری شرط پوری نہ ہو تو لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر, یعنی عام احوال میں نصب جس طرح آتا ہے اسی علامت پر وہ منصوب ہو جاتا ہے. اور نصب کی کئی صورتیں ہیں, کبھی نصب آتا ہے فتحہ کے ساتھ, رأیت زیدن رأیت رجلن, دیکھو نصب فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے, اور کبھی نصب جو ہے کسرہ کی صورت میں آتا ہے, جیسے رأیت مسلمات, یہ جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے, تو رأیت مسلمات یہ اس وقت منصوب ہے, اور منصوب بھی لفظن ہے, یعنی لفظن ہم اس نصب پر تلفظ کر رہے ہیں, نصب پر तो ये ना आप कहें कि यहां शायद नसब तकदीरन है, नहीं नहीं, इसका नसब आता ही कसरा के साथ है और आप इस वक्त उस कसरा पर तलफुज कर रहे हैं, तो ये इस वक्त रअयतु मुस्लिमातिन, ये मुस्लिमातिन का एराब कैसे बताएंगे, ये मंसूब है लफजन, यानी एराब पर यानी नसब पर हम बाकायदा तलफुज कर रहे हैं जो कसरा की सूरत में है। और कभी नसब जो है वो या माकबल मफतूह के साथ आता है, जैसे तस्निया है, तस्निया का रफा अलिफ के साथ आता है और नसब और जर या माकबल मफतूह के साथ, जानी रजुलानी अलिफ के साथ रफा आया, रअयतु रजुलैनी व मररतु बि रजुलैनी, नसब किसके साथ आया, या माकबल मफतूह के साथ। और कभी कभार नसब जो है या माकबल मकसूर के साथ आता है और यह जमा मुअन्नस सालिम में है, जैसे रअयतु मुस्लिमीना, तो ये या माकबल कसरा के साथ नसब आ रहा है। और कभी नसब जो है वो अलिफ के साथ भी आता है, वो अस्माए सिता मुकब्बरा मुआहदा मुजाफा इला गैरी आयल मुतकल्लिम, लेकिन उसको साहिब जामी जिक्र नहीं फरमाएंगे। वजह ये कि ये वो सूरत जिक्र हो रही है जहां तीसरी शर्त पूरी ना हो, यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ ना हो, और अस्माए सिता मुकब्बरा का एराब अलिफ व और या के साथ तब आता है जब वो मुजाफ हो रहे हो या मुतकल्लिम के इलावा की तरफ। वहां कई शर्तें थीं, अस्माए सिता हो, मुकब्बरा हो यानी तस्गीर ना हो, मुआहदा हो यानी तस्निया या जमा ना हो, और नीज मुजाफ हो लेकिन गैर या की तरफ हो, मुजाफ की यानी या की तरफ मुजाफ ना हो। लेकिन यहां तो कह दिया कि तीसरी शर्त यानी मुजाफ या मुशाबे मुजाफ नहीं होना चाहिए, तो उसकी मिसाल साहिब जामी जिक्र नहीं फरमाएंगे। और फिर बतलाया था कि अगर पहली दो शर्तों में से कोई शर्त पूरी ना हुई, यानी ला का इसम ला के साथ मिला हुआ ना हुआ बल्कि दरमियान में फसल हुआ, या दूसरी शर्त पूरी ना हुई यानी ला का इसम जो है वो नकेरा ना हुआ बल्कि मारिफा, तो इन दोनों सूरतों में ला के इसम पर रफा वाजिब है। जैसे ला जैदुन फिदारी वाला अमरुन, रफा भी वाजिब है और तकरार ला मा तकरार इसम भी होगा। ला जैदुन फिदारी वला अमरुन, तो जैदुन पर रफा भी आया और आगे एक और ला और उसका इसम भी आया, या दरमियान में फसल आ जाए, ला फिदारी रजुलुन वला मरअतुन, तो ये ला उसके बाद फिदार जार मजरूर आया, और आपने पढ़ा है जार मजरूर कभी भी मुस्नद इलै नहीं बनता, ये मुस्नद तो बन सकता है लेकिन मुस्नद इलै नहीं, तो ला के बाद फिदार आया तो ये ला की खबर तो बन सकता है, ला का इसम नहीं बन सकता, तो और आगे रजुल आ रहा है वो बनेगा ला का इसम, तो दरमियान में फसल आ गया तो अब उस पर रफा पड़ेंगे, लाफिदारी रजुलुन, और नीज तकरारे ला भी होगा मा तकरारे इसम के, वला इमरातुन, लाफिदारी रजुलुन वला मरातुन। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ ला का इसम कभी मंसूब होता है, कभी मबनी अलल फता होता है और कभी मरफू होता है। ये सारा मतन हम हल कर चुके थे, अब आइए इस सारे को शरा के साथ हल करते हैं। आइए भाई आज का सबक भाई, अल मंसूब बी लल्लती लि नफील जिनसी। मैंने आपको बतलाया था कि ये ला जो है ला से लफ्ज ला मुराद है, और लफ्ज बोलकर जब लफ्ज का इरादा किया जाए तो वो मारिफा होता है, लिहाजा इसीलिए उसकी सिफत अल्लती इसमें मौसूल यानी मारिफा लेकर आए। अलमनसूब वो जो मनसूब होता है बिला उस ला के जरिए। देखो बाज तलबा फिर परेशान होते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि लफ्ज बोलकर लफ्ज का इरादा है, उसकी निशानी यह है कि उसका फिर तर्जमा नहीं किया जाता, तर्जमा नहीं किया जाता। यहां पर भी देखो अलमनसूब बिला, इस ला का हम तर्जमा नहीं करेंगे, हालांकि ला का तो क्या माना है नहीं, लेकिन यहां तर्जमा नहीं करेंगे। अलमनसूब बिला वो जो मनसूब होता है ला की वजह से, तवज्जो है, तो ये अलामत है, तर्जमे से आपको फौरन पता चल जाएगा। तो वो जो मनसूब होता है बिला उस ला की वजह से, अल्लतीली नफील जिनसी, जो किस लिए आता है नफिये जिन्स के लिए। मैंने आपको बतलाया था कि ये अल जिन्स से पहले मुजाफ जो है महजूफ है, अली नफिये सिफतिल जिन्सी, वो ला जो किस लिए आता है जिन्स की सिफत की नफी के लिए आता है, जिन्स से सिफत की नफी करता है। ला रजुला काइमुन, कोई आदमी खड़ा नहीं है। देखो मैं इसमें आदमी के न होने को जिक्र नहीं कर रहा कि किसी आदमी का वजूद ही नहीं है, कोई आदमी है ही नहीं, बल्कि मैं रजुल से कियाम की सिफत की नफी कर रहा हूं कि कोई आदमी खड़ा नहीं है। तो मालूम हुआ ये ला जो है ये जिंस की नफी नहीं करता बल्कि जिंस की सिफत की नफी करता है। तो अल जिंस से पहले सिफत का लफ्ज मुजाफ महजूफ है। वही साहिब जामी आगे बयान फरमा रहे हैं अली नफी सिफत इल जिंस, वो ला जो किस लिए आता है, जिंस की सिफत की नफी के लिए आता है। वह हुक्म ही, ये हुक्म का अतफ हो रहा है सिफत पर, सिफतिल जिंसी व हुक्मिल जिंसी, सिफतिल जिंसी व, तो यानी अली नफ सिफतिल जिंसी वली नफ हुक्मिल जिंसी, वो ला जो किस लिए आता है, जिंस की सिफत की नफी के लिए और जिंस के हुक्म की नफी के लिए, यानी जिंस से किसी हुक्म की आप नफी करते हैं। मसलन मैं कहता हूं ला रजुला कायमुन, तो मैंने रजुल से किसकी नफी की, सिफत कियाम की नफी की। ये यूं कहो मैंने जिनसे रजुल से ये जो कायम का हुक्म है इस कायम के इस कियाम के हुक्म की नफी कर दी, तो सिफत की नफी कह लो या हुक्म की नफी कह लें भाई। तो कहते हैं अली नफी सिफत इल जिनसी व हुक्म ही, वो जो जिन्स की सिफत की नफी के लिए और उसके हुक्म की नफी के लिए आता है। तवज्जो है, तर्जमा फिर देख लें, अल मनसूबु बिलल्लती लिनफ़िल जिंसी ऐ लिनफ़ि सिफ़तिल जिंसी व हुक्मही, वो जो मनसूब होता है उस ला की वजह से जो जिंस की सिफत की नफी के लिए और उसके हुक्म की नफी के लिए आता है, उस जिंस के हुक्म की नफी के लिए आता है। वह इन्नमा लम यकुल इस्मुला, भाई मातिन ने अल मनसूबु बिला कहा जबकि इससे माकबल काना की बात आई थी तो कहा था खबरु काना, और पहल इन्ना के इसम की बात आई तो कहा इस्मु इन्ना, तो यहां कहना चाहिए था इस्मु ला, लाए नफी जिंस का इसम जो है वो मंसूब होता है मंसूबात में से, लेकिन साहिब जामी बताएंगे नहीं भाई इसम इसलिए नहीं कहा कि लाए नफी जिंस का इसम हमेशा मंसूब नहीं होता। अभी बताया तीन सूरतें हैं वहां, कभी क्या होगा मंसूब होगा जब तीनों शर्तें पूरी हों, जैसे ला गुलाम रजुलेन फिद्दार, और कभी मबनी अल फता होगा जब तीसरी शर्त पूरी ना हो, ला रजुला फिद्दार, ये मबनी अल फता है ये मंसूब नहीं है। और तीसरी सूरत क्या थी कि अगर मारिफा हो या मफसूल हो दरमियान में फसल हो तो फिर मरफू होगा। तो कितनी सूरतें हो गई ला नफी जिंस के इसम में, तीन सूरतें, तीन में से एक सूरत में नसब आ रहा है, दो सूरतों के अंदर नसब नहीं है। तो अगर यूं कह देते इस्मु ला, ला का इसम, तो पढ़ने वाला क्या समझता, शायद ला का इसम हमेशा मंसूब होता है, लेकिन ला का इसम तो हमेशा मंसूब नहीं होता। तो ला नफी जिंस के इसम की तीन सूरतें बन गईं, एक सूरत में मंसूब है, एक सूरत में मबनी अल फता है और एक सूरत में मरफू है, तो कुल तीन सूरतें हुई हुई, तीन सूरतें। तो लिहाजा अगर कह देते इस्मु ला तो फिर पढ़ने वाला तालिब इल्म समझता शायद ला का इसम हमेशा मंसूब होता है, हालांकि हमेशा मंसूब नहीं होता। बल्कि गौर करें तीन सूरतें हैं भाई, कभी मंसूब होगा, कभी मबनी अल फता और कभी मरफू होगा, तो गोया अक्सर सूरतों के अंदर मंसूब नहीं है। तवज्जो है, तीन में से दो सूरतों में मंसूब नहीं है, अगर अक्सर सूरतों में मंसूब होता यानी तीन में से कम से कम दो सूरतों में मंसूब होता तो भी हम कह सकते थे कि इसमें ला, यानी हकीकतन तो नहीं लेकिन मजाजन कह सकते थे, क्योंकि आपने जाब्ता पढ़ा है लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तवज्जो है लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो तीन में से अगर कम से कम दो सूरतों में भी क्या होता मंसूब, तब भी मजाजन हम कह सकते हैं इसमें ला क्या होता है मंसूब होता है। मजाजन कैसे, यानी अक्सर सूरतों में नहीं। तवज्जो देखो, फिर समझो, फिर समझो, यहां मंसूबात की बहस चल रही है और साहिब काफिया ने फरमाया अल मंसूबु बिला कि मंसूबात में से एक वो है जो मंसूब होता है ला की वजह से। भाई कहना तो यूं चाहिए था इस्मु ला कि मंसूबात में से क्या है, इसमें ला है, लेकिन इसमें ला नहीं कहा बल्कि कहा अल मंसूब बिला, वो जो मंसूब होता है ला की वजह से। तो इसकी क्या वजह है, साहिब काफिया ने इस्म ला क्यों नहीं कहा? तो साहिब जामी ने आपको बतलाया कि लाए नफी जिंस का इसम हमेशा मंसूब नहीं होता। लाए नफी जिंस की इसम की तीन सूरतें हैं भाई, कभी वो मंसूब होगा और कभी वो मबनी अलल फता होगा और कभी वो मरफू होगा। तो तीन सूरतों में से सिर्फ एक सूरत के अंदर वो मंसूब है। तो अगर तीनों सूरतों में मंसूब होता तो भी साहिब काफिया कह देते इस्मु ला। तो इस सूरत में साहिब काफिया का कलाम हकीकत पर मबनी होता। भाई देखो, एक है हकीकत और एक है मजाज। हकीकत यह है कि जिस लफ्ज को जिस माना के लिए वजा किया गया हो उसी में उसको इस्तेमाल किया जाए, यह क्या है हकीकत। और मजाज क्या है कि लफ्ज को मानाए गैर मौजू लहू में इस्तेमाल किया जाए। जैसे शेर का लफ्ज वजा है एक जंगली दरिंदे के लिए, तो अगर शेर का लफ्ज बोलें और आप जंगली दरिंदे के माना का इरादा करें तो यह है हकीकत। और अगर आप शेर का लफ्ज बोलें और उससे बहादुर आदमी का इरादा करें तो ये इसको कहते हैं मजाज। तो अगर तीनों सूरतों में ला का इसम क्या होता, मंसूब होता, तवज्जो है, तो फिर भी साहिब काफिया कह सकते थे कि इसमें ला मंसूबात में से है। तो इस सूरत में साहिब काफिया का कलाम हकीकत पर मबनी होता, क्योंकि हकीकत में भी ला का इसम हमेशा क्या होता है, मंसूब। या तीन में से कम अज कम दो सूरतों के अंदर भी, दो सूरतों के अंदर भी अगर ला का इसम मंसूब होता तो भी साहिब काफिया कह सकते थे कि इसमें ला मंसूब होता है, क्योंकि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, लिल अक्सर हुक्मुल कुल। तो तीन में से दो सूरतें अक्सर हैं, निसब से जायद हैं, तो कम अज कम दो सूरतों में भी ला का इसम मंसूब होता तो साहिब काफिया कह सकते थे कि इसमें ला क्या होता है, मंसूब होता है। और इस सूरत में साहिब काफिया का कलाम हकीकत तो ना होता, हकीकत पर तो मबनी नहीं लेकिन मजाज पर मबनी है। किस तरह, क्योंकि तीन में से कितनी सूरतों में मंसूब होता, फर्ज करो अगर तीन में से दो सूरतों में, और वो तो क्या कह रहे हैं कि इसमें ला मंसूब होता है, इससे तो क्या पता चल रहा है तमाम सूरतों में मंसूब होता है और तमाम सूरतों में तो वह हकीकतन मंसूब नहीं, तो भी इस सूरत में बात चल जाती किस जाब्ते पर, कि लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो यह मजाज पर कलाम महमूल हो जाता। लेकिन ना तो साहिब काफिया हकीकतन कह सकते हैं कि इसमें ला मंसूब होता है और ना मजाजन, क्योंकि अक्सर अहवाल में भी वो मंसूब नहीं होता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन नमा लम यकुल इस्मुला, कहते हैं साहिब काफिया ने इस्मुला नहीं कहा, ले अन्नहू लैस कुल्लुहू वला अक्सरुहू मिनल मंसूबात, इसलिए क्योंकि लाक नफी जिंस का इसम जो है ना तो वो सारा यानी हर एक, ना तो वो हर एक मंसूबात में से है और ना उसमें से अक्सर जो है वो मंसूबात में से है। लिअन्नहु लैसा कुल्लुहु वला अक्सरुहु मिनल मंसूबाति, इसलिए क्योंकि ला नफी जिंस के इसम में से ना तो सारे और ना ही अक्सर जो हैं वो मंसूबात में से हैं। फला यसिहु जालुहु मुतलकन मिनल मंसूबाति, लिहाजा ला के इसम को मुतलकन मंसूबात में से करार देना सही नहीं है। ला हकीकतन वला मजाजन, ना तो हकीकतन और ना मजाजन। अगर तमाम सूरतों में मंसूब होता तो फिर हम कह सकते थे इसमें ला मंसूब होता है और यह कलाम हकीकत पर मबनी होता, या अक्सर सूरतों में मंसूब होता तो भी साहिब काफिया कह सकते थे कि ला का इसम मंसूब होता है और फिर यह कलाम मजाज पर महमूल होता, और लिल अक्सर हुक्मुल कुल के जाब्ते के तहत। भाई बात समझ में आ गई। तो लेकिन यहां पर ना इसको हकीकतन मंसूबात में से करार दिया जा सकता है और ना मजाजन। तो साहिब काफिया फरमाते हैं फला यसिहु जालुहु मुतलकन मिनल मंसूबाति ला हकीकतन वला मजाजन, तो सही नहीं है कि इस ला नफी जिंस के इसम को मुतलकन मंसूबात में से करार दिया जाए। ला हकीकतन वला मजाजन, ना तो हकीकतन और ना मजाजन, यानी ना तो हकीकतन ला नफी जिंस के इसम को मंसूबात में से करार दिया जा सकता है और ना मजाजन। भाई बलिल मंसूब मिन्हु अकल्लु मिम्मा अदाहु, बल्कि इसमें से जो मंसूब है वो तो कम है मिम्मा अदाहु उसके मुकाबले में जो उसके अलावा है, जो मंसूब के अलावा मंसूब कलील है उसके मुकाबले में जो मंसूब के अलावा है। بل المنصوب منه, بلکہ اس لائے نفی جنس کے اسم میں سے جو منصوب ہے, اقل وق زیادہ کم ہے, مما عداه اس کے مقابلے میں جو منصوب کے علاوہ ہیں, فلا بد من التعبیر عنه بالمنصوب بها, لہذا ضروری ہے کہ اس کو تعبیر کرنا بالمنصوب بها, وہ جو منصوب ہوتا ہے بها کس کے ذریعے, لا کے ذریعے, ہذا ضمیر لا کو راجع ہے. تو یہاں اسم لا نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو کس کے ساتھ, منصوب بلا کے ساتھ اس کو تعبیر کرنا ضروری ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں فلا بد من التعبیر عنہ, لہذا ضروری ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے, یعنی اس کو ذکر کیا جائے, بالمنصوب بہا کس کے ذریعے, وہ جو منصوب ہوتا ہے لا کے ذریعے, بخلاف ما عداه من المنصوبات, بخلاف اس کے علاوہ جو منصوبات ہیں. بھائی باقیوں کے اندر میں نے جیسے ذکر کیا اوپر کیا کہا تھا, اسم انا, کیونکہ انا کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, اس سے پہلے کہا خبر کانا, کانا کی خبر, کیونکہ وہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے, توجہ ہے. تو باقی جو منصوبات گزرے وہ سارے جو ہیں وہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں, یا ان میں سے اکثر منصوب ہوتے ہیں اکثر صورتوں میں, جیسے مستثنا ہے, مستثنا منصوبات کے اندر مستثنا کا بھی ذکر آیا تھا, لیکن مستثنا ہمیشہ نہیں منصوب ہوتا. آپ نے پڑھا ہے مستثنا کبھی کیا ہوگا, منصوب, کبھی مستثنا مجرور ہوتا ہے, غیر ان سوا سوا اور حاشا کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے, اور کبھی مستثنا بدل بنتا ہے, اور کبھی مستثنا علی حسب العوامل. تو مستثنا میں تو چار صورتیں ہیں, لیکن نصب والی صورتیں سب سے زیادہ ہیں, اس لیے آپ کہیں مستثنا منصوب ہوتا ہے, یہ حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے لیکن مجازن ایسا ہی ہے, کیونکہ لیل اکثر حکم الکل, تو آپ نے مجازن کہہ دیا کہ مستثنا کیا ہوتا ہے, ہمیشہ منصوب, وہی اکثر کا حکم کل پر ہی آپ نے لگا دیا. تو کہتے ہیں بخلاف ما عداه من المنصوبات, بخلاف اس کے جو اس کے علاوہ ہیں, من المنصوبات یعنی کہ منصوبات, یہ من المنصوبات بیان ہے ما کا, وہ جو اس کے علاوہ ہیں, بھئی اس کے علاوہ کیا مراد ہے, من المنصوبات یعنی کہ منصوبات, لہذا اس ما کی جگہ ذرا منصوبات کو لے آئیں اور پھر ترجمہ کریں, بخلاف ما عداه من المنصوبات, بخلاف اس کے علاوہ جو منصوبات ہیں. طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے, بخلاف اس کے علاوہ جو منصوبات ہیں, فَإِنَّ بَعْضَهَا, اس لیے کیونکہ ان میں سے بعض جو ہیں, وَإِن لَّمْ يَكُن كُلُّهُ مِنَ الْمَنْصُوبَاتِ, اگرچہ وہ سارے کے سارے منصوبات میں سے نہیں ہیں, لیکن اکثرہ منہا, لیکن ان میں سے اکثر کس میں سے ہیں, منصوبات میں سے ہیں, فَأُعْتِيَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ, تو اکثر کو کل والا حکم دے دیا گیا, جیسے میں نے مستثنا کی مثال ذکر کی, مستثنا میں تو کئی اعراب آتے ہیں لیکن مطلقاً کیا کہہ دیا, مستثنا منصوب ہوتا ہے, یہ حقیقتاً ہے یا مجازن ہے, مجازن ہے, حقیقتاً تو ہمیشہ نہیں منصوب ہوتا, لیکن للاکثر حکم الکل کے ضابطے کے تحت یوں مطلقاً کہہ دیا کہ مستثنا منصوب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں فَأُعْتِيَ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ, تو اکثر کو کل کا حکم دے دیا گیا, فَعُدَّ الْكُلُّ مِنْهَا تَجَوُّزًا, تو شمار کیا گیا تم سب کو, مینہا کس میں سے, منصوبات میں سے, تَجَوُّزًا یعنی مجازن. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو سب کو ہی مجازن منصوبات میں سے شمار کر لیا گیا. بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں, مستثنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مستثنا کس میں سے ہے, منصوبات میں سے ہے, یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازن ہے, کیونکہ تمام مستثنا منصوب نہیں ہوتے بلکہ بعض مجرور ہوتے ہیں یا بدل ہوتے ہیں یا علی حسب العوامل ان پر اعراب آتا ہے. ولا يبعد ان يقال اسم لا هو المنصوب بها لفظا, آگے صاحب جامع ایک اور بھی جواب دے رہے ہیں, انہوں نے کیا کہا کہ صاحب کافیہ نے المنصوب بلا کیوں کہا, اسم لا کیوں نہیں کہا, وجہ ذکر کر دی کیونکہ اکثر صورتوں میں یہ منصوب نہیں ہوتا. آگے صاحب جامی بتائیں گے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں, لا نفی جنس کے اسم میں تو تین صورتیں ہیں, کبھی منصوب ہوگا, کبھی مبنی علی الفتح ہوگا, اور کبھی مرفوع ہوگا. تو صاحب جامع آپ کو بتلائیں گے نہیں بھائی, آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. بھائی وہ کس طرح, کہتے ہیں دیکھو یہ جو लाए नफी जिंस का इसम, जो पहली सूरत क्या थी, मनसूब होता है, एक सूरत तो है ही मनसूब, दूसरी सूरत में क्या है, वो मबनी अलल फता है, ये मबनी है, मबनी अलल फता है, और मबनी का भी एराब बताया जाता है या नहीं बताया जाता, जा हाजा क्या तरकीब होगी, जा फेल, हाजा हाजा इसका फाइल है, और फाइल का क्या एराब होता है, मरफू, कौन सा मरफू है, लफ्जन तकदीरन या महल्लन, महल्लन, तो मबनी का एराब महल्लन बतलाया जाता है, तो जा हाजा के अंदर हाजा मरफू है, महल्लन फाइल है, तवज्जो है। इसी तरह ला रजुला फिद्दार, इसके अंदर जो ला नफी जिंस का इसम है मबनी अलल फता है, लेकिन यह महल्लन मनसूब है, क्योंकि मबनी का एराब कैसे बताते हैं, महल्लन बतलाते हैं। तो देखो मालूम हुआ लय नफी जिंस का इसम कभी कभार लफ्जन मनसूब होगा, जब तीनों शर्तें पूरी हों, ला गुलाम रजुलिन फिद्दार, देखो ये गुलाम क्या है, मनसूब है लफ्जन, और कभी लय नफी जिंस का इसम मनसूब होगा महल्लन, ला रजुल फिद्दार, रजुल क्या है, मबनी अल फता है, लेकिन महल्लन मनसूब है, तवज्जो है। तो देखो ये दोनों सूरतों में ला का इसम मनसूब है, और तीसरी सूरत क्या थी कि ला नफी जिंस का इसम मरफू हो, याद रखो आगे साहिब जामी भी आपको बतलाएंगे, जब ला नफी जिंस का इसम मारिफा आ जाए या दरमियान में फसल आ जाए तो उस पर रफा पड़ेंगे, और ये रफा मुबतदा होने की वजह से है, किसकी वजह से, मुबतदा होने की वजह से है, ला जैदुन फिद्दारी वला अमरुन। अब आपसे कोई तरकीब पूछे तो आप कहेंगे ये लाए नफी जिंस है लेकिन ये मुलगा अनिल हमल है, ये अमल नहीं कर रहा इस वक्त, क्यों अमल नहीं कर रहा, क्योंकि इसका इसम मारिफा आ गया और ये मारिफा के अंदर अमल नहीं करता, वो दूसरी शर्त पूरी नहीं, इसका इसम क्या होना चाहिए था, नकेरा, ये तो मारिफा आ गया तो अब इसके अंदर ला अमल नहीं कर रहा, जब ला अमल नहीं कर रहा तो अब ये मुबतदा है, मरफू है, मुबतदा क्या होता है, मरफू, और किस वजह से मरफू होता है, उसमें इब्तिदा आमिल होती है, लाए नफी जिंस आमिल नहीं होता, तो लिहाजा वो सूरतें जिसमें लाए नफी जिंस का इसम मरफू है वो मरफू है मुबतदा होने की वजह से, तो ला तो उसके अंदर अमल ही नहीं कर रहा, तो गोया वो लाए नफी जिंस का इसम है ही नहीं हकीकत में, वैसे उसको सूरतन कह देते हैं ये लाए नफी जिंस का इसम है, लेकिन हकीकत में वो लाए नफी जिंस का इसम है ही नहीं, क्योंकि लाए नफी जिंस का इसम होता ला उसके अंदर अमल करता भाई, और यहां तो ला कोई अमल नहीं कर रहा। तो कुल कितनी सूरतें थी, तीन सूरतें, एक सूरत में लाए नफी जिंस का इसम मनसूब था, दूसरी सूरत में मबनी अल फता था, तीसरी सूरत में मरफू है। तो इनमें से, इनमें से पहली सूरत तो मनसूब है, दूसरी सूरत मबनी अल फता वो महल्लन, वो भी महल्लन मनसूब है, और तीसरी सूरत वो तो लाए नफी जिंस का इसम है ही नहीं, वो तो मुब्तदा है, तो लाए नफी जिंस की दो ही सूरतें बनी और वो दोनों मनसूब हैं, एक लफ्जन मनसूब है एक महल्लन मनसूब है, बात समझ में आ गई। लिहाजा साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि आप यूं भी कह सकते हैं कि लाए नफी जिंस का इसम हमेशा मनसूब होता है, कभी लफ्जन और कभी महल्लन। तो कहते हैं वला यबउदू, और यह बात भी बाईद नहीं है, अं युकाला कि यूं कहा जाए, इस्मु ला हुवल मनसूबु बिहा, कि ला का इसम जो है वो मनसूब होता है ला की वजह से लफ्जन, कभी वो मनसूब क्या होगा लफ्जन, कल मुजाफी व शिबह ही, जैसे कि मुजाफ है और शिबह मुजाफ है, और महल्लन या लाए नफी जिसका इसम महल्लन मनसूब होगा, कमा हुआ मबनी युमिन हु, जैसे कि वो जो इसमें से मबनी होता है अलल फतह, किस पर, फतहा पर, वो क्या है महल्लन मनसूब है, व अम्मा मा हुआ मरफून, और बाकी वो जो मरफू है फलैस अस्मन लहा, वो ला का इसम नहीं है, लिआदमी अमली हाफी ही, इसलिए क्योंकि ला उसके अंदर अमल नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई, तो दो जवाब हो गए भाई, एक सूरत क्या कि मनसूब क्यों कहा, क्योंकि ला का इसम हमेशा मनसूब नहीं होता और ना ही अक्सर सूरतों में मनसूब होता है, और एक जवाब यह दिया कि आप यह भी कह सकते हैं कि हमेशा मनसूब होता है लेकिन कभी लफ्जन होगा और कभी महल्लन, और वो सूरत जो रफे वाली है उस सूरत में वो ला का इसम ही नहीं, क्योंकि ला उसमें अमल ही नहीं कर रहा। आगे देखिए भाई, कहते हैं हुअल मुस्नदु इलैहि बाद दुखुलिहा, आप देखो लाए नफी जींस के इसम की तारीफ कर रहे हैं, किसकी? लाए नफी जींस के इसम की तारीफ। लाए नफी जींस का इसम किसे कहते हैं? कहते हैं हुवल मुस्नद इलैही, वो जो मुस्नद इलैह होता है बाद दुखूलिहा, ला के दाखिल होने के बाद, ला के दाखिल होने के बाद। देखिए आगे एक मिसाल आ रही है दो तीन लफ्जों के बाद, ला गुलामा रजुलिन अबूहु कायमुन, ला गुलामा रजुलिन अबूहु कायमुन। तवज्जो से सुनो, ये ला लाए नफी जिंस है, गुलाम रजुलिन ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये ला का इसम है और ये मंसूब है, तीनों शर्तें पूरी हैं। और अबूहु कायमुन ये पूरा जुमला ये है लाए नफी जिंस की खबर। तवज्जो है, ये वही एतराज है जो पीछे इन्ना में भी हुआ था, इन्ना के इसम में भी और काना की खबर में भी। तो अबूहु कायमुन ये पूरा जुमला ये लाए नफी जिंस की खबर है, लेकिन ये पूरा जुमला है, इस जुमले के अंदर अबूहु ये है मुबतदा और कायमुन है उसकी खबर। तो अबूहु ये हुआ मुस्नद इलैह, ये क्या हुआ? मुस्नद इलैह। तो अब ये भी लाए नफी जिंस के इसम की तारीफ में दाखिल हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? हुवल मुस्नद इलैहि बादा दुखूलिहा, लाए नफी जिंस का इसम वो मुस्नद इलैह होता है ला के दाखिल होने के बाद। तो ये अबूहु ये भी लाए नफी जिंस के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैह है, लिहाजा इसको भी क्या कहना चाहिए? लाए नफी जिंस का इसम, लेकिन ये तो लाए नफी जिंस का इसम नहीं है, ये तो मुब्तदा है और कायमुन उसकी खबर है। मुब्तदा खबर मिलकर पूरा जुमला, और फिर इस पूरे जुमले का इस्नाद हो गया गुलाम रजुलिन की तरफ, ये है ला की खबर। तवज्जो है, तो इश्काल क्या? आपने क्या कहा? लाए नफी जिंस का इसम ला के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैह होता है, तो ये अबूहु भी ला के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैह है, लिहाजा इसको भी लाए नफी जिंस का इसम कहना चाहिए। तो जवाब पीछे गुजर चुका कि भाई ला के दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैह हो, यानी वो इस्नाद ला के दाखिल होने के बाद आना चाहिए, पहले नहीं। और जबकि यहां पर अबूहू और कायमुन के अंदर जो इस्नाद है ये तो ला के दाखिल होने से पहले का है, ला के दाखिल होने से। मसलन मैंने कहा आपसे, आप एक जुमला बनाना चाहते हैं, मैंने आपसे, आप ला ले आए कि भाई मैं ला के साथ एक जुमला बनाना चाहता हूं, मैंने पूछा भाई इसका इसम किसको बनाओगे, आप ले आए गुलाम रजुलिन की, यह है ला का इसम। फिर मैंने कहा इसकी खबर किसे बनाओगे, आप अबूहु कायमुन को ले आए कि यह होगी ला की खबर। तो जब आप इसको लाए हैं, अभी ला की खबर नहीं बनाया, पहले से ही ये पूरा जुमला है, इसके अंदर एक मुस्नद है और एक मुस्नद इले, तो देखो ये तो पहले से ही मुस्नद इले है ला के दाखिल होने से पहले, और हमने तो क्या कहा ला के दाखिल होने के बाद वो मुस्नद इले होगा। तवज्जो है, लिहाजा ये अबूहू को लेकर आप एतराज नहीं कर सकते। यह दूसरा जवाब जो गुजरा था कि भाई दाखिल होने का यह माना नहीं कि लफ्जों में उस पर दाखिल हो, लफ्जों में, बल्कि दाखिल होने का माना यह है कि ये ला जो है लफ्जों में या माना में अपना असर भी दे, लफ्जों में या माना में अपना असर भी दे। और यहां पर ये ला जो है इसने अबूहू के अंदर ना तो लफ्जों में कोई अमल किया, लफ्जों में कोई अमल नहीं किया, और नीज माना के अंदर भी असर नहीं किया। माना के अंदर ला क्या असर करता है कि नफी का फायदा देता है, क्या फायदा देता है? नफी। लेकिन यहां पर ये जो कायमुन का इस्नाद हो रहा है अबूहू की तरफ, उसके अंदर नफी नहीं आई, बल्कि ये अबूहू कायमुन पूरे जुमले का इस्नाद जो गुलाम रजुलिन की तरफ हो रहा है उसके अंदर नफी आई है। तवज्जो है, तो मालूम हुआ ला ने ला लफ्जों में कोई अमल किया है अबूहू के अंदर, और ना ही उसके उसका जो इस्नाद है उसमें कोई माना के अंदर असर किया है, लिहाजा ये तारीफ के अंदर दाखिल नहीं पाई। तो ये तारीख में दाखिल नहीं, और इसको दाखिल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ला का इसम नहीं है। दोबारा देखिए भाई मतन, कहते हैं हुअल मुस्नद इलैही बाद दुखूलिहा, लाए नफी जिंस का इसम जो है वो मुस्नद इलैह होता है बाद दुखूलिहा, ला के दाखिल होने के बाद। तो कहते हैं खराज बिही मिस्लु अबूहू, कहते हैं इसके जरिए अबूहू जैसे अल्फाज निकल गए, फी ला गुलाम रजुलिन अबूहू कायमुन, इस जैसी मिसालों में, इस जैसी मिसालों के अंदर ये जो अबूहू का लफ्ज आ रहा है वो इस तारीफ से निकल गए, लिमा आरफ था, उस वजह से जो आप जान चुके हैं, यानी वो जो हमने पीछे जिक्र कर दिया था भाई। وَحَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطْلَقًا, اور اتنی مقدار. اب توجہ سے سنو بھائی, میں نے آپ کو کیا کہا, هُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا. یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ لا نفی جنس کے اسم کی. لیکن لا نفی جنس کے مطلق اسم کی تعریف کر رہے ہیں یا اس میں سے جو منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ منصوب ہوتا ہے, کیونکہ پیچھے منصوب کی بات آئی تھی, المنصوب باللتی لنفی الجنسی. تو اگر مطلق لا نفی جنس کی اسم کی تعریف مقصود ہوتی کہ لا نفی جنس کے اسم کسے کہتے ہیں, تو آپ کہہ دیتے وہ جو مسند الیہ ہوتا ہے لا کے داخل ہونے کے بعد. لیکن یہاں مطلق اس لا نفی جنس کے اسم کی تعریف مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ جو اس میں سے منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس کے اندر تو مسند الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ تین شرطیں بھی ہونی چاہیے, کہ ساتھ بھی ملا ہوا ہو اور نکرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف ہو. تو اس لیے اب وہ بھی آگے ذکر کریں گے. کہتے ہیں وَحَادَ الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطْلَقًا, کہتے ہیں اتنی مقدار کافی ہے, فی حد اسمها, لا نفی جنس کے اسم کی تعریف میں. حد کہتے ہیں جامع مانع تعریف, جامع مانع تعریف. اور اتنی مقدار کافی ہے, یعنی جتنی یہ جو تعریف کر دی, هو المسند الیہ بعد دخولها, اتنی مقدار تعریف کی یہ کافی ہے. کس چیز میں؟ فی حد اسمها مطلقاً, مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی تعریف میں. مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں, منصوب ہوگا یا مبنی علی الفتح ہوگا یا مرفوع ہوگا, اس کو چھوڑ دیں. مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی آپ تعریف کرنا چاہیں تو اتنی تعریف کافی ہے, یہ سب پر صادق آ رہی ہے, توجہ ہے. لیکن مصنف یہاں وہ جو اس میں سے منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آگے شرطیں بھی ذکر کریں گے. تو کہتے ہیں وَحَادَ الْقَدْرُ كَافٍ فِي حَدِّ اسْمِهَا مُطْلَقًا, اور اتنی مقدار تعریف کی یہ کافی ہے, مطلقاً لا نفی جنس کے اسم کی تعریف کے اندر. لَكِنَّهُ لَمَّا أَرَادَ حَدَّ الْمَنْصُوبِ مِنْهُ, لیکن جب مصنف نے ارادہ کیا, کس چیز کا ارادہ کیا؟ حد المنصوب منہ, اس میں سے جو منصوب ہوتا ہے اس کی تعریف کا, تو زاد علیہ قولہ, تو اس پر اپنا یہ قول بڑھا دیا, یلیہا. توجہ ہے, اب وہ شرطیں بڑھائیں گے, یہ بڑھا دی شرطیں. یلیہا, بھائی یلی فیل ہے, ولی یلی اس کا معنی ہے ساتھ ملا ہوا ہونا, ساتھ جڑا ہوا ہونا. توجہ ہے, ملنا جڑنا. ولی یلی, یلی اصل میں کیا تھا؟ یو لیو, توجہ ہے, فعل مضارع یو لیو. پھر جیسے وعد یعیدو, یعیدو اصل میں کیا تھا؟ یعیدو. اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے اندر اگر فا کی جگہ واو آ جائے اور اس سے ما قبل فتحہ ہو اور ما بعد کسرہ ہو, تو اس واو کو گرا دیتے ہیں. تو اس لیے یعیدو سے کیا بن گیا؟ یعیدو. تو اسی طرح یولیو, یہ واو گر گیا, کیا بن گیا؟ یلیو. اور پھر آخر میں یا پر ضمہ تھا اور ضمہ تو یا پر ثقیل ہے, وہ گر گیا تو کیا بن گیا؟ یلی, ولی یلی. تو یلی فعل ہے, اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے, توجہ ہے. اور یہ جو ہا ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے نا, یلی ہا, یہ ہا ضمیر مفعول بھی کی ہے. تو یلی کے اندر ضمیر مستطیر ہے ہوا, توجہ ہے. یہ آگے ساری اب گہری باتیں آ رہی ہیں, لہذا خوب توجہ سے سنو. یلی کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور وہ ضمیر مستطیر ہے, اور یہ جو ہا ضمیر ہے ساتھ ملی ہوئی, یہ ضمیر بارز ہے. ضمیر بارز کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہر ہوتی ہے, جس پر انسان کیا کرتا ہے؟ تلفظ کرتا ہے. تو یلی کے اندر ہوا ضمیر وہ مستطیر ہے, اس پر ہم تلفظ نہیں کر رہے, لیکن یہ ہا ضمیر بارز ہے, ظاہر ہے. تو اب یہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ وہ ضمیر مستطیر جو یلی کے اندر ہے. اور یہ ہا ضمیر, یہ ضمیر بارز کس کو راجع ہے؟ تو صاحب جامی آپ کو بتلائیں گے. آگے دیکھیے, ایلی المسند الیہ, معلوم ہوا یلی کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ پیچھے جو مسند الیہ کا ذکر آیا تھا کہ وہ مسند الیہ ملا ہوا ہو, اور ہا بھائی کس کے ساتھ ملا ہوا ہو, یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ آگے بتلایا, لفظ لا کس کے ساتھ ملا ہوا ہو؟ لفظ لا کے ساتھ جڑا ہوا ہو. بھائی تین شرطیں تھیں, پہلی شرط کیا تھی؟ کہ لا نفی جنس کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو, توجہ ہے. को यली के अंदर हुआ जमीर किसको राज है, मुस्नद इलैह को, लिहाजा इसीलिए मैंने पढ़ा आई यलिल मुस्नदु इलैह, इस पर मैंने रफा पढ़ा। रफा क्यों पढ़ा, क्योंकि ये यली के लिए फाइल है, ये वो जमीर का मर्ज बतलाया। और आगे मैंने पढ़ा लफ्जा ता ला, यहां ता पर मैंने जबर पढ़ा, क्यों, क्योंकि ये यली के लिए मफूल भी ही बन रहा है, वही यली हा अयली लफ्जा ता ला, तवज्जो है, तो इसलिए मनसूब है। फिर ये याद रखना ये हा जमीर राजे है ला को, और ला क्या है हर्फ, और हर्फ अरबी में मुजक्कर भी इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस भी, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल किस तरह है, मुअन्नस है, तो इसलिए मुअन्नस की जमीर राजे कर दी, क्योंकि ये ला क्या है हर्फ। या ये ला को कलीमा की तावील में ले लें, ला भी क्या है एक कलीमा है, इसम फेल हर्फ सब क्या है कलीमा है। कलीमा किसे कहते हैं, वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, बामाना लफ्ज को कहते हैं, तो ला भी नफी के लिए आता है, इसका माना है, तो ये कलीमा है। तो हा जमीर ला को राजे कर दें, या तो किस तावील में कि ये हर्फ है, या किस तावील में कि ये कलीमा है, और कलीमा के साथ भी गोलता जुड़ी हुई है तानीस वाली, तवज्जो है। लेकिन साहिब जामी ने क्या कहा लफ्जा ताला, क्या कहा बतौर तफन्नुन के भाई के ये हा जमीर हर्फ या कलीमा के बजाय लफ्जा की तावील में भी आप इसकी तरफ लौटा सकते हैं। एक है लफ्ज, एक है लफ्जतुन गोलता के साथ। लफ्ज लफ्ज जो है मस्दर है, लफ्ज क्या है, और आपने पढ़ा है मस्दर इसमें जिन्स है, इसका इतला कलील और कसीर सब पर होता है। एक लफ्ज हो वो भी लफ्ज है, हजार लफ्ज हो वो भी क्या है लफ्ज है। जैसे एक इंसान हो वो भी क्या है इंसान, हजार हो वो भी क्या है इंसान। तवज्जो है भाई, एक होता है मुफरद, एक तस्निया, एक जमा। एक किताब हो तो हम कहेंगे किताब अरबी में, दो हो तो क्या कहेंगे किताबानी, तस्निया के लिए अरबी में अलग लफ्ज है। और एक है जमा, तीन या तीन से ज्यादा हो तो क्या कहेंगे कुतुब। तवज्जो है, तो एक के लिए किताब है, दो के लिए किताबानी, और जमा के लिए कुतुब। लेकिन इसमें जिन्स ऐसा होता है उसका इतलाक कलील और कसीर पर, उसी एक लफ्ज का इतलाक सब पर होता है, वहां तस्निया जमा बनाने की जरूरत नहीं। एक इंसान हो तब भी वो इंसान है, दो या ज्यादा हो तब भी वो क्या है इंसान है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर इसी तरह यह लफ्ज क्या है मस्दर है, और मस्दर इसमें जिन्स है, और इसमें जिन्स का इतलाक कलील पर भी होता है और कसीर पर भी होता है। तवज्जो है, लेकिन बिलखसूस अगर आप एक लफ्ज का इरादा करना चाहते हैं तो फिर गोलता साथ जोड़ देते हैं। लफ्ज का इतलाक क्या है कलील पर भी हो सकता है और कसीर पर भी। एक लफ्ज हो वो भी लफ्ज है, हजार हो वो भी लफ्ज, लेकिन आप बिलखसूस एक लफ्ज का इरादा करना चाहें तो फिर उसके साथ गोलता जोड़ देंगे। ये ता वहदत वाली है जो एक फर्द पर दलालत करती है। लफ्जतुन का क्या माना एक लफ्ज, तवज्जो है एक लफ्ज, तो ये ता वहदत वाली है, लेकिन बहरहाल है तो गोलता, तो लिहाजा इस जब लफ्जत ता की तावील में भी जमीर लौटाएंगे तो फिर कौन सी लौटानी पड़ेगी मुअन्नस वाली। तवज्जो है, मैंने क्या बतलाया कि ये हा जमीर किसको राजे ला की तरफ, या तो ये वो हर्फ है इस तावील में राजे कर लें, या वो कलीमा है और कलीमा के साथ भी गोलता जुड़ी हुई है तो उसकी तरफ भी मुअन्नस ज़मीर राजे करेंगे, या किस तावील में लफ्जतुन की तावील में कि ये एक लफ्ज जो है और लफ्जतुन में ता वहदत की है लेकिन ये बहरहाल है तो गोलता तो उसकी तरफ भी मुअन्नस की ज़मीर राजे करेंगे। तो कहते हैं आई यलिल मुस्नदु इलैही लफ्जता ला, यानी वो मुस्नद इलैह मिला हुआ हो ला के लफ्ज के साथ। भाई ला के लफ्ज के साथ मिला हुआ हो क्या माना माना बयान कर रहे हैं, अयकउ बादहा बिला फासिलतिन, यानी वो मुसनद इलैह ला के बाद वाके हो बिला फासिलतिन बगैर किसी फासले के, दरमियान में कोई फसल ना हो। यलीहा का क्या माना उसके साथ जुड़ा हुआ हो, यानी दरमियान में कोई फसल ना हो। भाई बात समझ में आ गई। आगे देखिए न के रतन, और नीज वो इसम क्या हो वो जो मुसनद इलैह है लानफी जिंस का जो इसम है, नकेरा तन वो नकेरा हो, मुजाफन और मुशब्बहन बिही, और मुजाफ हो या मुशब्बह मुजाफ हो यानी मुशाबे मुजाफ हो, तवज्जो है, मुशब्बहन बिही या उसके मुशाबे हो। ये बिही जमीर किसको राजे है, साहिब जामी बतला रहे हैं आई बिल मुजाफी, मुजाफन और मुशब्बहन बिल मुजाफी, मुजाफ हो या मुशाबे, मुजाफ हो। भाई भाई किस चीज में मुशाबे हो, मुशाबेहत के लिए कोई वजह चाहिए होती है ना, तो बतला रहे हैं कि भाई ये जो मुशाबे मुजाफ है ये मुजाफ के मुशाबे है इस चीज के अंदर। जैसे मुजाफ मोहताज होता है मुजाफुनिले का, मुजाफुनिले के बगैर मुजाफ का माना पूरा नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं जैद का गुलाम, तो कैसे कहूंगा, गुलाम जैदिन। सिर्फ गुलाम कहूं तो क्या आपके जहन में जैद का गुलाम आएगा, नहीं। गुलाम तो आम है, वो तो हर गुलाम पर सादिक आ रहा है। तो मुजाफ का माना बगैर मुजाफिले के पूरा ही नहीं होता। तो लिहाजा जैसे मुजाफ मोहताज होता है अपने माना के पूरा होने में मुजाफिले का, इसी तरह मुशाबे मुजाफ उसको कहते हैं जो मुजाफ तो नहीं लेकिन उसका माना पूरा नहीं होता जब तक आप उसके साथ और लफ्ज ना जोड़ेंगे। जैसे मैंने कल मिसालें जिक्र की थी, या तालिअन जबलन, ए पहाड़ पर चढ़ने वाले, तो ये तालिअन का माना पूरा नहीं होता जब तक इसके साथ जबलन नहीं मिलाएंगे। तालिअन का माना चढ़ने वाला, भाई किस चीज पर चढ़ने वाला, दरख्त पर चढ़ने वाला, पहाड़ पर चढ़ने वाला, दीवार पर चढ़ने वाला, सीढ़ी पर चढ़ने वाला, या तुलू होने वाला, क्या माना पूरा नहीं होता जब तक जबल या जिदार वगैरह इसके साथ नहीं मिलाएंगे। तो या तालिअन जबलन, ये तालिअन ये मुशाबे मुजाफ है, मुजाफ तो नहीं हो रहा, आगे मुजाफिले तो नहीं आ रहा, लेकिन जबलन के बगैर इसका माना पूरा नहीं। इसी तरह मैंने बताया था ये जो हुरूफ जारा जिन लफ्जों के साथ जुड़ते हैं, जार मैंने बताया था जार मजरूर आठ चीजों से मुतालिक होते हैं, ये जब मौजूद हों तो ये जुड़ेंगे तो उस लफ्ज का माना पूरा होगा, ये जब तक जुड़ेंगे नहीं उसका माना पूरा नहीं। मसलन मैं आपको कहता हूं आमरुन खैरुम मिन ज़ैदिन, आमरुन खैरुम मिन ज़ैदिन, आमर बेहतर है जैद से, ये खैरुन इसमें तफजील है, और मिन ज़ैदिन किससे मुतालिक है, ये खैर इसमें तफजील से मुतालिक है। इसमें तफजील के इस्तेमाल के कितने तरीके हैं, तीन, अलिफ लाम इजाफत या मीन के साथ, यहां मीन के साथ है। तो यहां जब तक ये मिन ज़ैदिन को खैर से नहीं जोड़ेंगे खैर का माना पूरा नहीं। अगर ये मिन ज़ैदिन को हटा दें आमरुन खैरुन, आमर बेहतर है, तो पूछने वाला फौरन कहेगा भाई किससे बेहतर है, बात तो पूरी करें, आपकी बात नहीं पूरी भाई। ये जो जार मजरूर ये सिला कहलाते हैं, तो जो ये सिला है इसके बगैर वो लफ्ज का माना पूरा नहीं, तो इसको भी मुशाबे मुजाफ कहेंगे। खैरुम मिन ज़ैदिन, इसमें से जो खैर है ये क्या है, मुशाबे मुजाफ है, मुजाफ तो नहीं है लेकिन मुशाबे मुजाफ है। इसके साथ जब तक ये मिन ज़ैदिन वगैरह नहीं जोड़ेंगे इसका माना पूरा नहीं। या इसी तरह इशरूना दिरहमन, मैंने मिसाल जिक्र की थी, इशरूना का माना 20, लेकिन क्या चीज 20 है, जब तक आगे दिरहमन वगैरह कोई लफ्ज नहीं जोड़ेंगे, आगे जो तमीज आती है तमीज नहीं लाएंगे इसका माना पूरा नहीं। तो इनको क्या कहते हैं, मुशाबेह मुजाफ। मालूम हुआ मुजाफ तो हमें पता है, दूसरा है मुशाबे मुजाफ। मुशाबे मुजाफ किसे, मुशाबे मुजाफ वो जो मुजाफ के मुशाबे है। भाई किस चीज में मुशाबे है, अपने माना के पूरा होने में, जैसे मुजाफ मोहताज था मुजाफिले का, ये भी अपने माना के पूरा होने में किसी और लफ्ज का मोहताज होता है। यही आगे बयान करें, देखो मुजाफन और मुशब्बहन भी ही ऐ बिल मुजाफी, मुजाफ हो या मुशाबे मुजाफ हो, किस चीज में मुशाबे है मुजाफ के साथ, कहते हैं फी ताल्लुक ही बिशय इन, एक ऐसी चीज के साथ ताल्लुक में, बिशय इन नकेरा है, शय इन क्या है नकेरा, और नकेरा के बाद हुआ मिन तमामी माना हो, यह पूरा जुमला इसमी आया, और नकेरा के बाद फेल आए तो उसके लिए क्या बनता है, सिफर, क्योंकि फेल अपने फाइल या नाई फाइल से मिलकर जुमला बनेगा, और जुमला किसके हुक्म में, नकेरा के हुक्म में, तो नकेरा के बाद नकेरा है तो वो फिर क्या बनते हैं, मौसूफ सिफत। तो यहां पर भी शय इन नकेरा आया, और हुआ मिन तमामी माना हुई, ये हुआ है मुबतदा, और मिन तमामी माना हुई ये उसकी खबर है, और मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया, और नकेरा शय इन के बाद ये जुमला इस्मिया आया तो ये उसके लिए सिफत बनेगा। भी शय इन ऐसी चीज, हुआ मिन तमामी माना हो जो उसके तमाम माना में से है, यानी उसके साथ उसका माना पूरा होता है, यानी उसके साथ उसका माना पूरा होता है। देखो अब बतला रहे हैं मुशाबे है मुजाफ, इन्होंने कहा वो जो मुजाफ के मुशाबे हो, भाई किस चीज में मुशाबे हो, फी के साथ बतला रहे हैं, कहते हैं मुशाबे है फी ताल्लुक ही बिशय इन हुआ मिन तमामी माना हो, इस चीज में मुशाबे है कि इसका ताल्लुक, जैसे भाई आप कहते हैं इधर देखो, मैं कहता हूं जैदुन कल असदी, जैद किसकी तरह है? शेर की तरह है। जैदुन कल असदी, जैद शेर जैसा है। आप कहेंगे भाई किस चीज में शेर जैसा है, तो आगे मैं वजह तशबीह फी के साथ बयान करूंगा। फिर शुजाती, शुजात में तवज्जो है, तो यहां भी यह फी के साथ किसको बयान किया जा रहा है? वजह तशबीह में किस चीज में यह मुजाफ के मुशाबे है, किस चीज में? फी ताल्लुक ही बिशयइन, इस चीज में कि इसका ताल्लुक है बिशयइन एक ऐसी चीज के साथ। हुआ मिन तमामी माना हो, जो इसके तमाम माना में से है, यानी इसके साथ इसका माना पूरा होता है, इसके बगैर इसका माना पूरा नहीं होता। जैसे इधर देखो खैरुम मिन ज़ैदिन, ये मिन ज़ैदिन के बगैर खैरुन का माना पूरा नहीं। इशरून दिरहमन, ये दिरहमन के बगैर इशरून का माना पूरा नहीं। या इसी तरह या तालियान जबलन, ये जबलन के बगैर तालियान का माना पूरा नहीं। तो इसको कहेंगे मुशाबे मुजाफ, यानी इस ये तालियान का ताल्लुक एक ऐसे चीज से है कि जिसके बगैर इसका माना पूरा नहीं। ये खैरून का जो लफ्ज है इसका ताल्लुक एक ऐसी चीज के साथ है जिसके बगैर इसका माना पूरा नहीं। यह इशरूना जो है इसका ताल्लुक एक ऐसी चीज के साथ है जिसके बगैर इसका माना पूरा नहीं। तो यही बयान कर रहे हैं कि वो जो मुशाबे है मुजाफ के साथ, फी ताल्लुक ही बिशयइन, इस चीज में कि इसका ताल्लुक एक ऐसी चीज के साथ है। हुआ मिन तमामी माना हो, जो उसके तमाम माना में से है, यानी उसके उसके साथ उसका माना पूरा होता है, उसके बगैर उसका माना पूरा नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई। अब साहिबे जामी आपको तरकीब बतलाएंगे कि यलीहा नकेरतन मुजाफन और मुशब्बहन बिही, ये तरकीब में क्या वाक हो रहे हैं। देखो नकेरतन इसको हम मंसूब पढ़ रहे हैं, मुजाफन इस पर भी क्या पढ़ रहे हैं, नसब पढ़ रहे हैं, और मुशब्बहन भी ही इस पर भी क्या पढ़ रहे हैं, नसब पढ़ रहे हैं। तो साहिब जामी आपको बतलाएंगे कि ये हाल हैं, ये सब क्या हैं, हाल। कौन कौन से? यलीहा ये भी हाल है, नकेरतन ये भी हाल है, मुजाफन और मुशब्बहन भी ही ये भी क्या है, हाल है। ये सब हाल वाके हो रहे हैं, और हाल के लिए जुलहाल चाहिए। ये किससे हाल वाके हो रहे हैं, तो जरा देखिए ये तरकीब पे नजर रखिए। एक सूरत ये है हुवल मुस्नदु इलैही, वो जो मतन में आया था हुवल मुस्नदु इलैही बादा दुखूलिहा, यहां इसमें जरा गौर करो, अल मुस्नदु इलैही, अल मुस्नद इस पर अल इफ्लाम दाखिल है, और अल मुस्नद कौन सा सीगा है, इसमें मफूल है, और इसमें मफूल पर जो अल इफ्लाम आए वो किस माना में होता है, अल्लजी के, वो दरअसल क्या है, इसमें मौसूल अल्लजी है। तो अल मुस्नद किस माना में हुआ, अल्लदी युस्नदु इलैही, अल्लदी युस्नदु इलैही, और युस्नदु फेले मजहूल है, और फेले मजहूल के लिए क्या चाहिए, नाए फाइल चाहिए। ये यूं कहो अल मुस्नद, ये मुस्नद क्या है, इसमें मफूल है, इसमें मफूल के लिए क्या चाहिए, नाए फाइल, वो क्या है, तो इलैही ये जार मजरूर इसका नाई फाइल है। मैंने तरकीब जिक्र की थी कि नहव की किताबों में आपको इस तरह मिलेगा कि कह देते हैं ये जार मजरूर इसका नाई फाइल है, हकीकत में वो जार मजरूर नाई फाइल सारा नहीं होता, वो जो मजरूर होता है वो नाई फाइल होता है हकीकत में। तो यहां पर भी इलैही ये जार मजरूर को कहेंगे ये नाइबुल फाइल है मुस्नद के लिए, या अल्लदी युस्नदु, खोल लें इसको, अल मुस्नद किस माना में, अल्लदी युस्नदु, तो ये युस्नदु के लिए इलैही जार मजरूर नाई फाइल कहेंगे, लेकिन हकीकत में ये सारा नाई फाइल नहीं है, बल्कि वो जो मजरूर ये जो हा जमीर है आखिर में ये है नाई फाइल। तो ये तरकीब कैसे मैंने बतलाया था कि इलैही जार मजरूर है, और जार मजरूर के लिए कोई ना कोई मुतअल्लक चाहिए, तो ये अल मुस्नद से मुतालिक होंगे। आपने पढ़ा है ना जार मजरूर फेल से भी मुतालिक हो सकते हैं, मस्तर से भी, इसमें फाइल, इसमें मफूल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील वगैरह, तवज्जो है। तो ये इलैही जार मजरूर किससे मुतालिक होंगे, अल मुस्नद, ये जो इसमें मफूल है इसके साथ मुतालिक हो जाएंगे। और ये हा जमीर कि ये इसका दो महल हैं, महल्ले करीब तो ये है कि ये मजरूर है इला की वजह से, हर्फ जर की वजह से, लेकिन महल्ले बाईद क्या है, मरफू है, ये नाइबुल फाइल है अल मुस्नद के लिए। तो जार मजरूर को नाइबुल फाइल या फाइल कह देते हैं, लेकिन हकीकत में वो मजरूर नाइबुल फाइल होता है। और क्यों कहते हैं जार मजरूर को, वजह यह कि जार मजरूर में इत्तिसाल बड़ा शदीद है, जार मजरूर में इत्तेसाल बड़ा शदीद है, लिहाजा इस पूरे मजमूए को ही क्या कह देते हैं, ये नायबुल फाइल है या ये फाइल है मौके के मुताबिक। और आपने पढ़ा है कि हाल जो है साहिब काफिया ने बतलाया था वो फाइल या मफूल बिही की हालत बयान करता है। तो ये सारी तकरीर मैंने इसलिए की क्योंकि ये इलई ही लफ्जों के अंदर, लफ्जों के एतबार से बज़ाहिर अगर ये मजरूर है लेकिन माना के एतबार से मरफू नायबुल फाइल है, और नायबुल फाइल है तो लिहाजा ये जुलहाल बन सकता है। हाल भी किससे आता है, फाइल से या मफूल बिही से, और नायबुल फाइल भी फाइल की तरह होता है, उसी का नायब है। तो ये इलेही की हाजमीर हुई जुलहाल, ये हुई जुलहाल, और यलीहा ये इससे हाले अव्वल आया, नकिरतन इससे हाले सानी आया, और मुजाफन और मुशब्बहन बिही ये हाले सालिस आया, या चार हाल कह लें लेकिन चूंकि आखिरी दो के अंदर औ है तो इसलिए उन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया कि इन दोनों में से एक वक्त में एक आएगा। तो बहरहाल ये चारों हाल हैं किसे, इलेही की हाजमीर से, और एक ही जुलहाल से कई हाल आ जाएं तो इनको कहते हैं अहवाल मुतरादिफा। एक ही जुलहाल हो और कई हाल आ जाएं तो इन अहवाल को क्या कहते हैं, ये अहवाल मुतरादिफा हैं। तो किताबों में आपको बाज जगह मिलेगा कि ये हाल है फुला से, और आगे आ जाएगा ये सब अहवाल मुतरादिफा हैं, तो आप समझ जाए मालूम हो ये सारे उसी एक जुलहाल से हाल बन रहे हैं, इसको अहवाल मुतरादिफा कहते हैं। और एक है अहवाल मुतदाखिला, अहवाल मुतदाखिला इसे कहते हैं कि एक जुलहाल होता है उससे एक हाल आता है, फिर उस हाल के अंदर कोई जमीर जो होती है वो फिर जुलहाल बनती है और उससे आगे फिर हाल आता है। तो गोया हाल से हाल आ गया, क्या आ गया, पहले एक जुलहाल आया उससे क्या आया हाल, फिर उस हाल के अंदर कोई जमीर थी वो जुलहाल बन गई और आगे फिर उससे क्या आ गया हाल, तो गोया हाल से हाल आया। तो इस तरह के जो अहवाल हों उनको अहवाल मुतदाखिला कहते हैं, क्या कहते हैं, अहवाल मुतदाखिला, के एक हाल दूसरे हाल में दाखिल हो रहा है। तो एक सूरत हमने क्या की कि इलेही की हा जमीर जुलहाल, और यलीहा और नकिरतन और मुजाफन और मुशब्बहन भी ये सब उससे हाल, तो ये कौन से अहवाल हुए, अहवाल मुतरादिफा, शाबश। दूसरी सूरत ये है कि यलीहा इसको हाल बनाए इलेही की हाजमीर से, तवज्जो है, और फिर इस यलीहा के अंदर हुआ जमीर भी वो भी तो इसी मुस्ने दिले को राजे है, यलीहा के अंदर हुआ जमीर जो अभी बतलाया था अय्यलिल मुस्नदु इलैही, तो इसके अंदर जो हुआ जमीर है वो भी इसी मुस्नद इलैह को राजे है, तो उस हुआ जमीर को फिर जुलहाल बना लें और आगे नकिरतन और मुजाफन और मुशब्बहन बिही को उससे हाल बना दें। फिर दोहराइए भाई, पहली तरकीब क्या थी कि हुअल मुस्नदु इलैही जो आया था हा जमीर को जुलहाल बनाए, और यलीहा और नकिरतन और मुजाफन और मुशब्बहन भी सब को उसी से हाल बना दें, तो ये क्या बन गए, अहवाले मुतरादिफा। दूसरी सूरत क्या कि ये जो यलीहा है इसको उसी इलेही की हाजमीर से हाल बनाएं, और फिर इस यलीहा के अंदर हुआ जमीर जो है फाइल की उसको जुलहाल बना दें, और आगे नकिरतन मुजाफन और मुशब्बहन भी इनको इस जमीर से हाल बना दें, तो ये क्या बन जाएंगे, अहवाले मुतदाखिला बन जाएंगे। बात समझ में आ गई, हासिल कलाम फिर भाई साहिब जामी जिक्र करेंगे इसलिए मैं बार बार तकरार करवा रहा हूं तवज्जो से, कि या तो इन सब को क्या बनाए, अहवाले मुतरादिफा, यानी यूं को ये चार हाल हैं, चलो औ को भी छोड़ दो, बस कितने हाल हैं, चार, और ये चारों हाल किससे हैं, इलेही के हा जमीर से, यानी अहवाले मुतरादिफा। दूसरी सूरत क्या है कि पहला वाला यलीहा इसको तो हाल बनाए इलेही की हा जमीर से, और बाकियों को हाल बनाए किससे, यलीहा के अंदर हुआ जमीर से, तवज्जो है। तो इस सूरत में ये क्या बन गए, अहवाले मुतदाखिला। ये हो गई दो तरकीबें। तीसरी तरकीब ये है कि ये जो यलीहा है इसको दुखूलिहा की हा जमीर से हाल बना लें, किससे, दुखूलिहा, और दुखूलिहा दुखूल मुजाफ और हा जमीर मुजाफोन इले, तो वह जो है हुअल मुस्नदु इलैही बादा दुखूलिहा, या इस हा जमीर से हाल बनाए, किसको? यली हा को। भाई हाल किससे आता है? हाल के लिए क्या चाहिए? जुल हाल। लेकिन जुल हाल हमेशा क्या होगा? फाइल या मफूल बिही। तो दुखूलिहा, यहां जमीर तो मुजाफुनीले है, यहां जमीर तो क्या मुजाफिले है। तो जवाब यह कि लफ्जों के एतबार से यह अगरचे मुजाफिले है, लेकिन माना के एतबार से यह फाइल है दुखूल मस्तर के लिए। जरा माना पर गौर करो कि ला नफी जींस का इसम हुअल मुस्नदु इलैही व मुस्नद इलैह होता है बाद दुखूलिहा, उसके दाखिल होने के बाद, यानी ला के दाखिल होने के बाद। तो दुखूलिहा हा जमीर किसको राजे? ला को राजे। तो किसका दाखिल होना जिक्र हुआ? ला का। मालूम हुआ ला क्या है? वो फाइल बन रहा है माना के एतबार से, फाइल है दुखूल मस्तर के लिए। बात भी समझ में आई कि नहीं? दुखूलिहा की हा जमीर क्या है? लफ्जों में मुजाफिले है, लेकिन माना के एतबार से यह फाइल है दुखूल मस्तर के लिए, दाखिल होना। भाई किसका दाखिल होना? बाद दुखूलिहा, उसके दाखिल होने के बाद। किसके दाखिल होने के बाद? ला के दाखिल होने के बाद। तवज्जो है, देखो दाखिल होने वाला कौन है? दाखिल होने वाला ला है, तो वो फाइल बन रहा है। तो ये दुखूलिहा, यह जमीर लफ्जों के एतबार से अगर मुजाफिले है मजरूर है, लेकिन माना के एतबार से यह दुखूल मस्दर के लिए फाइल है भाई, और इससे भी हाल आ सकता है। तो इससे ये यलीहा को हाल बना लें, और हाल और जुलहाल में याद रखो रबत चाहिए। तो इस यलीहा के अंदर यलीहा, इसको हम इलेही की हा जमीर से भी हाल बना सकते हैं और दुखूलिहा की हा जमीर से भी। वजह यह कि इसमें दोनों जमीरें हैं यलीहा के अंदर। यली के अंदर हुआ जमीर भी मौजूद है जो उस मुसनद इलैह को लौट रही है, और इसके साथ यह हा जमीर भी जुड़ी हुई है जो किसको लौट रही है? ला को। किसको? तो लिहाजा आप इलेही से भी हाल बना सकते हैं और दुखूलिहा से भी। बात भी समझ में आई कि नहीं? हाल के लिए हमेशा रबत चाहिए। किसके साथ? जुलहाल के साथ, जुलहाल के साथ। और जब पूरा जुमला हाल वाके हो तो कभी रबत वाव के जरिए देते हैं, आप पढ़ चुके हैं वाव हालिया जो है, और कभी जमीर के जरिए रबत देते हैं, और कभी दोनों के जरिए रबत देते हैं। तो यहां पर भी अहुअल मुस्नद इलेही, इस हा जमीर से यलीहा को हाल बनाया। क्या बनाया? हाल बनाया। तो हाल का रबत चाहिए किससे? जुलहाल से। और ये पूरा जुमला है यलीहा, फेल अपने फाइल और मफूल बी से मिलकर जुमला है, और जुमला जब भी हाल वाके हो तो रबत के लिए क्या चाहिए? वाव या जमीर। तो यहां पर वाव तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हुआ जमीर है जो उसी इलेही की हा जमीर को राजे है। तवज्जो है। और आप चाहें तो दुखूलिहा की हा जमीर से भी इसको हाल बना सकते हैं। दुखूलिहा की हा जमीर किसको राजे? ला को। इससे क्या मुराद है? ला। और यलीहा की हा जमीर भी किसको राजे है? ला को। तवज्जो है। तो यूं कहो, यलीहा को हाल बनाया दुखूलिहा की हा जमीर से, और ये यलीहा की हा जमीर उसी जमीर की तरफ राजे कर दी, क्योंकि हाल के लिए रबत चाहिए किससे? जुलहाल से। तो अब यूं ना कहें कि हा जमीर को राजे है, ये ताबीर अच्छी नहीं। यूं कहें हा जमीर जुलहाल को राजे है, जो भी है हमारी उससे बहस नहीं। दुखूलिहा में क्या है? हा जुलहाल। और यलीहा के अंदर हा जमीर भी किसको राजे? जुलहाल को। तो रबत आ गया। तो ये यलीहा दोनों से हाल बन सकता है, लेकिन ये जो आगे हाल आ रहे हैं ना, नकेरतन मुजाफन और मुशबहन भी, ये दुखूलिहा की हा जमीर से हाल नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि दुखूलिहा किसका दाखिल होना? ला का दाखिल होना। तो वजह है ला का दाखिल होना। तो ये यलीहा, इसका तो रबत आ जाएगा दुखूलिहा की हा जमीर से, लेकिन इस हाल में कि वो नकेरा हो, भाई वो नकेरा ला होगा या ला का इसम नकेरा होगा? ला का इसम नकेरा होगा। ला तो हर्फ है उसमें, वो तो नकेरा मारिफा नहीं होता भाई। लिहाजा ये नकेरा, ये दुखूलिहा की हा जमीर से हाल नहीं बन सकता, क्योंकि अगर उससे आप हाल बनाएंगे तो इसका माना यह हुआ कि वो ला नकेरा होना चाहिए। दुखूलिहा हा जमीर किसको राजे? ला को। वो ला दाखिल हो इस हाल में कि वो ला क्या होना चाहिए? नकेरा। ये तो माना सारा खराब हो गया। लिहाजा ये नकेरतन इसको दुखूलिहा की हा जमीर से हाल नहीं बना सकते। इसी तरह मुजाफन और मुशबहन, वो इसम मुजाफ होना चाहिए या मुशाबे मुजाफ होना चाहिए? ये भी उस दुखूलिहा की हा जमीर से हाल नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई? तो हासिल कलाम क्या हुआ? हासिल कलाम ये, यहां तीन तरकीबें हो सकती हैं। या तो ये सारे अहवाल मुतरादिफा बना दो, किस से? अल मुस्नद इलेही की हा जमीर से, या यलीहा इसको हाल बनाएं इलेही की हा जमीर से, और मा बकिया को किससे बना दें? यलीहा के हुआ जमीर से। या तीसरी सूरत यह है कि यलीहा को हाल बना दें दुखुलिहा की हा जमीर से, और आगे जो अहवाल आ रहे हैं उसको यली के हुआ जमीर से हाल बना दें। सूरत समझ में आ गई। देखिए अब यही साहिब जामी बयान करेंगे, कहते हैं हाजही अहवाल उन मुतरादिफतुम मिन जमीर मजरूर फी इलैही, ये अहवाल मुतरादिफा हैं उस जमीर से जो मजरूर है, फी इलैही किसके अंदर? इलैही के अंदर। अविल उला मिनहू, या इनमें से पहला हाल जो है वो इस जमीर मजरूर से है। पहला हाल यलीहा किससे है? इलैही की हा जमीर मजरूर से। अमीना जमीर इल मजरूरी फी दुखूलिहा, याद रखो इसका आतफ जो है अमीना जमीर इल मजरूरी, अमीना जमीर इल, इसका आतफ पीछे जो आया ना अविल उला मिनहू, ये मिनहू पर आतफ है, या पहला हाल मिनहू किसमें से होगा? इलेही की हा जमीर से, या वो पहला जो है मीना औ मीना जमीर इल मजरूरी फी दुखूलिहा, ये पहला हाल किससे होगा? दुखूलिहा की जमीर मजरूर से। व मा बकी अमीना जमीर इल मरफू फी यलीहा, और मा बाकी जो अहवाल हैं वो जो जमीर मरफू है फी यलीहा किसके अंदर? यलीहा के अंदर। यलीहा के अंदर देखो हुआ जमीर मरफू है, और ये जो हा जमीर साथ जुड़ी हुई है ये तो मंसूब है भाई। तो क्या तरकीबें बयान की साहिब जामी ने? किया तो ये सारे अहवाल मुतरादिफा हैं। फिर देखो तर्जमा, हाजिही अहवाल उन मुतरादिफा तुम मिन जमीर इल मजरूरी फी इलेही, या तो ये सारे अहवाल मुतरादिफा हैं किस, वो जो जमीर मजरूर है इलेही के अंदर। अविल उला, या इनमें से जो पहला है, पहला कौन सा? यलीहा, तवज्जो है यलीहा, या तो वो हाल है मिनहू इसी जमीर मजरूर से, अमिना जमीर इल मजरूर फी दुखूलिहा, या वो जो दुखूलिहा के अंदर जमीर मजरूर है उससे, ये जो पहला वाला है। और बाकी वमा बकिया, और वो जो बाकी के अहवाल हैं मिना जमीर इल मरफू फी यलीहा, वो जो जमीर मरफू है यलीहा के अंदर उससे हाल है। बात समझ में आ गई। मिसलु ला गुलामा रजुलिन, जैसे कि ला गुलामा रजुलिन, ये किसकी मिसाल है? ला गुलामा रजुलिन, ला नफी जिंस का इसम मंसूब है और तीनों शर्तें पूरी, साथ मिला हुआ है और नकिरा है और मुजाफ है। मुशाबे मुजाफ की मिसाल आगे आ रही है, वला इशरीन दिरहमन, तो ये मुजाफ की मिसाल है। तो कहते हैं मिसलु ला गुलामा रजुलिन मिसाल लिमा यलीहा नकिरतन मुजाफन, ये मिसाल है उस लाइन फी जिंस की इसम की जो उसके साथ मिला हुआ है, नकेरा है और मुजाफ है। वफी बाजिन नुस्खी, भाई इस नुस्खे में तो सिर्फ ये आया, मतन मतन जरा देखो, मिसलु ला गुलामा रजुलिन वला इशरीन दिरहमन लका, एक ही खबर दोनों जुमलों की निकाल दी लका आखिर में। तो असल में ये दो जुमले हैं, ला गुलामा रजुलिन लका वला इशरीन दिरहमन लका, लेकिन पहले में से लका को हजफ कर लिया वो दूसरे पर इक्तफा करते हुए कि तालिबिलम उससे समझ जाएगा। ये मशहूर नुस्खे इसी तरह हैं, लेकिन बाज काफिया के नुस्खों में ला गुलामा रजुलिन जरीफुन फीहा, इसकी खबर भी साथ ही जिक्र है, ला गुलामा रजुलिन जरीफुन फीहा। तो कहते हैं वफी बाजिन नुसखी, और काफिया के बाद नुस्खों में ला गुलामा रजुलिन जरीफ उनफीहा, ये मिसाल इस तरह है भाई। वकद अरफ तफिल मरफूआती, भाई देखिए मरफूआत में ये मिसाल जिक्र हुई थी, ला गुलामा रजुलिन जरीफ उनफीहा, वहां जिक्र हुआ था लाए नफी जिंस की खबर किसमें से है? मरफूआत में से है। वहां यह मिसाल जिक्र हुई थी ला गुलामा रजुलिन जरीफुन फीहा, यानी वहां जरीफुन फीहा खबर आई थी। वहां मैंने आपको बतलाया था, साहिब जामी ने जिक्र किया था कि जरीफ सिफत मुशब्बा है, जरीफ क्या है? सिफत मुशब्बा, और आगे फीहा जार मजरूर आ रहा है, तो और आपने पढ़ा है जार मजरूर आठ चीजों से मुतालिक हो सकते हैं, और वो कौन सी आठ चीजें हैं? या फेल होगा, या मसदर, या इसमें फाइल या इसमें मफूल या सिफत मुशब्बा या इसमें तफजील या मुबालगे के सीगे या इसमें फेल। तो इनमें देखो सिफत मुशब्बा भी है, तो ये फीहा जार मजरूर को जरीफ उन सिफत मुशब्बा से न जोड़ना, बल्कि ये खबर सानी है। भाई क्यों इसके साथ क्यों नहीं जोड़ सकते? कहते हैं वजह यह कि सूरत में माना खराब हो जाएगा। माना यह हो जाएगा कि जरीफ उन फीहा घर के अंदर खुशतबा हो, फीहा जरीफ खुशतबा है किसमें? घर में। मालूम हुआ घर से बाहर खुशतबा नहीं है। हालांकि जराफत यानी खुशतबी खुशमिजाजी जो है वो किसी जगह से मुकैद नहीं होती। एक आदमी खुशमिजाज है, हंसी मजाक करने वाला है, तो उसकी तबीयत हर जगह इसी तरह रहेगी। ये नहीं हो सकता घर के अंदर जाए तो खुशतबा, घर से बाहर जाए तो खुशतबा नहीं। तवज्जो है, आप ये ना कहें भाई हो सकता है एक आदमी घर जाके हंसी मजाक करता हो, बाहर करता ही नहीं है। नहीं भाई, करने ना करने की बात नहीं हो रही, मिजाज की बात हो रही है। मिजाज तो उसका वही रहेगा चाहे वो करे या ना करे। तवज्जो है, तो यहां एक आदमी का खुश मिजाज होना वो मुकैद हो कि घर के अंदर खुश मिजाज है और घर से बाहर खुश मिजाज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जराफत है, ये जो खुश तबई है, ये मुकैद नहीं हो सकती किसी जगह के साथ। बात समझ में आ गई? यानी बिलफेल खुशतबी करना यहां मुराद नहीं है, बल्कि तबीयत की बात हो रही है। तबीयत तो वही रहेगी चाहे वो हंसी मजाक करे या ना करे। तो लिहाजा जराफत खुशतबी किसी जगह के साथ मुकैद नहीं हो सकती, लिहाजा फीहा को जरीफुन के साथ नहीं जोड़ सकते। ये इसको खबर सानी बनाएंगे। ला गुलाम रजुलिन, ये गुलाम रजुलिन ये लाए नफी जींस का इसम है, जरीफुन इसकी खबर अव्वल है, और फीहा ये साबितुन से मुतालिक होकर खबर सानी है। तो सवाल पैदा होता है कि फिर ये दो खबरें क्यों लाए, एक ही ले आते? तो वहां साहिब जामी ने जिक्र किया था कि अगर एक खबर लाते तो फिर झूठ लाजिम आता। ला गुलाम रजुलिन जरीफुन, किसी आदमी का कोई गुलाम खुशतबा नहीं है, खुशमिजाज नहीं है, और ये तो झूठ लाजिम आएगा। ये कैसे हो सकता है दुनिया में किसी आदमी का कोई भी गुलाम खुशमिजाज ना हो? भाई लिहाजा फीहा साथ एक और खबर भी जोड़ दी कि खुशतबा भी हो और उस घर के अंदर भी हो, ऐसा नहीं है। और ये तो आयन मुमकिन है, कोई एक घर है उसके अंदर किसी आदमी का कोई खुशमिजाज गुलाम न हो। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा इसलिए खबर है। तो देखो हमारे अकाबिर झूठ हंसी मजाक और मिसालों के अंदर भी झूठ से अपने आप को बचाते हैं, और अफसोस आज हमारा ये हाल है, बच्चा बच्चा झूठ बोलता है और परवाह ही नहीं। भाई तो अल्लाह हम सबकी इस्लाह फरमाए। अल्लाह तो कहते हैं वफी बाजिन नुसखी, और काफिया के बाद नुस्खों में ला गुलाम रजुलिन जरीफुन फीहा यह मिसाल जिक्र है। वकद अरफ तफिल मरफूआती तहकीक कौलिही फीहा, और तहकीक आप जान चुके हैं मरफूआत की बहस के अंदर, तहकीक कौलिही फीहा साहिब काफिया का कौल जो फीहा है उसकी तहकीक की। दूसरी खबर क्यों लाए? झूठ से बचने के लिए लाए। भाई वला इशरीन दिरहमन लका जी, देखो ये किसकी मिसाल है? मुशाबे मुजाफ की। लाइनफी जींस का इसम साथ भी मिला हुआ है, नकिरा भी है और मुशाबे मुजाफ है। तो कहते हैं मिसाल उन लिमा यली हा नकिरतन मुशब्बहन बिल मुजाफी, ये मिसाल है उस लाइनफी जींस के इसम की जो उसके साथ मिला हुआ हो, नकिरा हो और मुशाबे मुजाफ हो। वकौलुहु लका अलन नुसखिल मशहूरती मिन ततिम्मतिल मिसालैन किलैहिमा, और ये मातिन का कौल जो लका आया मतन में, अलन नुसखिल मशहूरती ये मशहूर नुस्खों की बिना पर, मिन ततिम्मतिल मिसालैन किलैहिमा ये दोनों मिसालों का ततिम्मा है, यानी इस पर दोनों मिसालें पूरी हो रही हैं, यानी ये लका का ताल्लुक दोनों से है। ला गुलाम रजुलिन लका और ला इशरीन दिरहमन लका, ये मशहूर नुस्खे के मुताबिक, यानी उसके अंदर ये जरीफुन फीहा नहीं है, उसके मुताबिक ये लका ततिम्मा है दोनों मिसालों का, दोनों के लिए ये खबर बनेगी। बात समझ में आ गई जी? हल हो गया? चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।